हरे कृष्णा। यहाँ पर जो विद्युत गई, ये गुणात्मा शब्द की व्याख्या के लिए भगवान ने किया। आत्मा का अर्थ है जीवन शक्ति कारण। जैसे इन पंखों में, लाउड स्पीकर में बिजली आत्मा है, उसके बिना ये सब मरे हुए हैं। ऐसे समस्त कल्याण गुणों के, सद्गुणों के जीवन दाता श्री कृष्ण हैं। इसी बात की व्याख्या के लिए लाइन कटी थी। किसी में भी कोई गुण है, कोई विशेषता है, दया, ऐश्वर्य, धन या सुंदरता, कुछ भी है, तो उसके कारण है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अनंत सौंदर्य से युक्त है, अनंत दया है, सब कुछ कल्याण गुण में अनंत है। कल्याण गुण का अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी किए हैं, सद्गुण, कल्याण गुण, खराब गुण नहीं, खराब विशेषता नहीं है भगवान में। कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि इस संसार में अगर किसी में दोष है, दुर्गुण है, तो उसके कारण भी भगवान है, न सर्व कारण कारणम, लेकिन उसके कारण भगवान नहीं है। समस्त सद्गुणों के, शुभ गुणों के, अच्छी विशेषताओं के वे कारण है, आत्मा है। और जिस समय श्री भगवान इस प्राकृत जगत में अवतार लेते हैं, तो अपने अनंत गुणों द्वारा वे समस्त जीवों का हित करते हैं, हितावतीर्णस्य। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसे कौन हैं जो गुणात्मा भगवान के गुणों को गिन करके शेष कर सके। गुणात्मनस्ते पि गुणान विमातुम, हे प्रभु, आप गुणात्मा हैं, गुणों की आत्मा कारण है, जीवन शक्ति है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके अनंत गुणों को विमान करने में, माप करने में, गिनने में समर्थ है। क इसीरे का अर्थ है समर्था। कौन समर्थ है? कोई नहीं। आज तक संसार में, इस प्राकृत जगत में जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे भगवान शंकरसन, स्वयं भगवान के अवतार हैं, विभूति हैं, और उनके मुख 10,000 हैं, 10,000 फण हैं, और 10,000 मुख से भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते रहते हैं, गुण गाते रहते हैं, लेकिन आज तक शेष नहीं कर पाया किसी भी गुण का। यदि भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो सौंदर्य का कोई शेष अब तक नहीं हुआ, ऐसा सुंदर है भगवान। और दया के विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवत में, जस्य प्रसादात अयितांश भाग ले समन्ने गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभुवन्ति पुंसः तमीश्वरम ताम शरणम प्रपद्ये। भगवान में जो कृपा है, जो प्रसाद है, वह कृपा एक अनंत समुद्र की तरह है, एक ऐसे सागर की कल्पना कीजिए जिसका कोई और छोर नहीं हो, तो अनंत कृपा है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी कृपा। नजत प्रसादायुत भाग लेसम अन्य च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभुवन्ति पुंसस्तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। सत्यव्रत महाराज कहते हैं भगवान मत्स्यदेव से, कि जिनके कृपा के करोड़वें अंश के बराबर भी, करोड़वें अंश बहुत सूक्ष्म अंश के बराबर भी अन्य सबकी समवेत कृपा नहीं हो सकती है। यदि सभी देवता प्रसन्न हो जाए किसी व्यक्ति पर, सब पूर्ण हृदय से पूर्ण कृपा करें और सारे गुरुजन भी प्रसन्न हो जाएं इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में, गुरु लोग प्रसन्न हो जाएं, माता पिता प्रसन्न हो जाएं, माता पिता अपने संतान के प्रति जैसा स्नेह करते हैं पूर्ण प्रसन्न हो जाएं, वे कृपा करें, और कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति हो जो सबके कृपा का समाहार करे, एक जगह इकट्ठा करे, तो भगवान के कृपा सिंधु के सीकर के बराबर भी सबकी समवेत कृपा की तुलना नहीं हो सकती है। सीकर का अर्थ है सीक से छिटका हुआ जल, जैसे गिलास में पानी लेते हैं और कोई सीक लेते हैं, नीम का सीक या किसी सीक जानते हैं ना, तो उस पानी में बोर करके फिर उसको छिड़कते हैं, तो उस सीक में सटे हुए जल की कई सूक्ष्म बूंदे बनती हैं, तो उसको सीकर कहते हैं। एक बूंद नहीं कह सकते हैं, सीकर बहुत छोटा होता है। तो सबकी कृपा, समस्त देवताओं की, समस्त गुरुओं की, समस्त माता पिता की कृपा एक जगह इकट्ठी की जाए तो भगवान के कृपा के सीकर के बराबर भी वो नहीं है। सबकी कृपा मिला दी जाए तब भी, ऐसे कृपालु हैं भगवान। सबकी कृपा समय सापेक्ष, देश सापेक्ष होती है, भगवान की कृपा समय सापेक्ष नहीं है। विश्व की सृष्टि किए हैं, सबको चला रहे हैं, लेकिन वे अब तक उबे नहीं। दूसरा कोई होता तो उब जाता, कह रहे इन लोगों को पालते पालते मैं परेशान हो रहा हूं, दम निकल रहा है, अब मारो इनको। लेकिन वे सृष्टि करते ही रहते हैं, पालन करते ही रहते हैं। भगवान का भजन करने वाले या नहीं करने वाले, सबको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, सबसे स्नेह है, सबको ज्ञान दे रहे हैं भीतर हृदय में रह करके। ऐसा नहीं है कि भगवान उब करके हृदय छोड़कर भाग जाएं, कि इस दुष्ट के हृदय में नहीं रहेंगे, यह केवल पाप करता है। फिर भगवान हृदय में स्नेह करके रह रहे हैं। कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि भगवान साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सब समय साथ रहेगा। तो सबकी कृपा, देवताओं की, गुरुओं की, श्रेष्ठ लोगों की और स्नेहवान माता पिता की कृपा इकट्ठी की जाए तो वह भगवान की कृपा सुधा सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं हुए। से हम लोग कहते हैं वैष्णवों के विषय में कि वैष्णव जन कृपा सिंधु होते हैं, कृपा सिंधु भय बच्चा, कृपा सिंधु। लेकिन सबकी कृपा इकट्ठी की जाए, समस्त सिंधुओं को मिलाया जाए, एक कारणों बना लिया जाए, जैसे प्रलय में पूरा ब्रह्मांड में समुद्र भर जाता है, तो ऐसे सबकी कृपा जुटाई जाए एक जगह, सारे सिंधुओं को एक जगह जुटाया जाए और वो सब सिंधु मिलकर भी भगवान के कृपा के सामने कुछ नहीं है, कृपा के सामने उनकी कोई तुलना नहीं है। यह कृपा है, कृपा वास्तव में वही है जो किसी भी स्थिति में बनी रहे, किसी के दोष दुर्गुण को देख करके उसे नफरत ना करें। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, कृपालु हैं ही, और सुंदरता उनमें है उसका वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। तो क्या किया जाए, भगवान के गुणों को न गिना जाए? नहीं, गिनना चाहिए, गाना चाहिए, लेकिन इस भावना से कि मैं शेष कर दूंगा, यह तो मिथ्या अभिमान मात्र है। भगवान शेष नाग जैसे सुकल्प समर्थ व्यक्ति, दक्ष व्यक्ति अब तक शेष नहीं कर पाए, निरंतर गाते रहते हैं। सब जा नहीं प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की प्रभुता, भगवान का ऐश्वर्य, उनकी महिमा को सब जानते हैं कि नहीं कहा जा सकता, शेष नहीं किया जा सकता, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा, कुछ न कुछ कहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी तरह से मैं भी कुछ कहूंगा। जो भगवान ने बुद्धि दिया है, जैसे भाषा दिया है, उसके अनुसार मैं कहूंगा। यही बात श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, और नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, अहम है पृष्ठो यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा व गमोत्र जावान, नभः पतन्तात्म समम पतत्रिण तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित। हे महात्माओं, आप लोग सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपने जो हमसे पूछा है भगवान की महिमा, तो मैं आत्मा व गमह, मेरी जहाँ तक पहुँच है, मेरी समझ है और जैसी मेरी वाणी शक्ति है, उसके अनुसार मैं वर्णन करूँगा। आत्म अवगमम, अपनी शक्ति के अनुसार, शुद्ध जी कहते हैं, जैसे पतत्रिण पक्षी आत्मसमम अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं। आकाश यद्यपि असीम है, अनंत है, फिर भी छोटे छोटे पक्षी भी, छोटे पंख वाले भी इसमें उड़ते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं। ऐसे ही भगवान की महिमा, भगवान का गुणानुवाद असीम है, अक्षर है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने, भक्तों ने, कवियों ने गान किया है, सबने गान किया है। श्री प्रहलाद महाराज कहे हैं भगवान नृसिंह देव से कि मैं जानता हूं कि आपकी महिमा को कह पाना, शेष कर पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं वर्णन करूंगा। तस्माद हम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि जथा मनीषम। हे प्रभो, हे नृसिंहदेव, आप परम ईश्वर हैं, प्रभु हैं, आपकी महिमा अनंत है, अगाध है, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपकी महिमा का बखान करूंगा, क्योंकि नीचो जया गुणसर विसर्ग शिष्ट पुएत ये नहीं पुमान अनुवर्णित न, क्योंकि अनुवर्णन से, आपके बारे में बोलने से और सुनने से ही जीव माया से पार होता है। गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट, इस भौतिक जगत में, गुणों की सृष्टि में, माया में जीव बद्ध है। यह कब यहां से मुक्त होगा? जब पवित्र होगा। हृदय में जो कामोपभोग की भावना है, संसार को भोगने की वासना, यही है गंदगी, काम लोभ गंदगी है। जब शुद्ध होगा तब मुक्त होगा। तो शुद्ध कैसे होता है? आपका गुण गाने से, कीर्तन करने से और आपके बारे में सुनने से, अनुवर्णन कहते हैं। पुमान पुएत, जीव पवित्र होता है आपके अनुवर्णन से, गान से और श्रवण से। अनुवर्णन का अर्थ है किसी ने पहले वर्णन किया है उसी की बात को दोहराना, एज इट इज, बदलना नहीं। तो पहले बहुत लोगों ने गान किया है, जिन्होंने भगवत तत्व को समझा है अच्छी तरह से वे गान किए हैं, जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद मुनि, सनकादि चार भाई, इन लोगों ने गान किया है, भगवान शिव ने गान किया है भगवान की महिमा का, भगवान की लीलाओं का। तो उन्होंने जो गान किया है उस गान के अनुसार फिर बाद में कहना, इसको अनुवर्णन कहते हैं या अनुवाद, गुणानुवाद। हम भगवान के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना करने का अधिकार नहीं है कि भगवान ऐसे हैं, ये हैं, ऐसा नहीं है, तो भगवान निराकार हैं। जैसे प्रभुपाद जी कल बोल रहे थे, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बहुत दिन का है इसलिए अब निश्चित मर गया होगा, इतना दिन कोई कैसे जी सकता है, और होगा भी तो कहीं ओल्ड हाउस में होगा, बूढ़ा हो गया होगा, इस तरह से कल्पना करते हैं। और इसको बहुत बड़ा माना जाता है लोक में, लोग कुछ लोग मूर्खता बस मानते हैं कि अगर कोई कहे कि भगवान निराकार है तो कहेंगे हाँ ये हायर ज्ञान है। कोई किसी के बारे में पूछे, मान लीजिए कोई पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कोई कहे कि ये वो तो निराकार है, तो इसको दूसरे लोग कहेंगे ये फर्स्ट क्लास का ज्ञान है, ये क्या ज्ञान है, तो केवल निगेशन है ना, केवल निगेटिव पॉइंट है। भगवान वास्तव में समस्त प्राकृत आकारों से रहित हैं, पर क्या है कि वे दिव्य गुणों से युक्त हैं, गुणों के आधार हैं, उनका शरीर परम सुंदर है, परम विद्वान है, तो यही वास्तविक वर्णन है। तो अनेक पुरुषों ने, भगवत भक्तों ने भगवान का वर्णन किया है, वर्णन करते ही आ रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने अपना वर्णन किया, श्री ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, नारद जी सुने, नारद जी ने वर्णन किया, भगवान वेदव्यास देव सुने, और वेदव्यास देव के बाद इस पृथ्वी पर सब जगह फैला हुआ है। अनेक पुराणों में, महाभारत में, अनेक ग्रंथों में भगवान ने दिया है भगवान का अनुवाद गुण है। तो उसको पढ़ करके, सुन करके, मनन करके और अर्वाचीन भक्त लोग वर्णन करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं, जो वेदव्यास देव ने कहा है वही कहते हैं। उन्होंने महाभारत लिखते समय लिखा कि श्री कृष्ण के विषय में श्री भगवान वाच, हमेशा लिखते जाते हैं श्री भगवान बोले, श्री भगवान बोले। तो सबका कर्तव्य यही है ना कि गीता को कहना कि यह भगवत वाणी है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लिखे कि कोई बहुत सुंदर आदमी बोल रहा है, श्री कृष्ण उवाच भी नहीं लिखे, क्योंकि ऐसे पर लोगों को भ्रम हो सकता था कि कृष्ण नाम का एक मनुष्य बोल रहा है, इसलिए वे संशय को मिटाते हुए लिखे थे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और ये भगवान बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना, परम ईश्वर समझना, ब्रह्म समझना, यही है शुद्ध ज्ञान। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुष्टाम विषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा। देवर्षि नारद आदि समस्त ऋषियों ने भगवान का इस तरह वर्णन किया है। आज के युग में एक फैशन हो गया है, जो मन में आवे वो बोलो वही प्रवचन हो जाएगा, भगवान से कोई कनेक्शन नहीं, वाणी का कुछ नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी जब बोलते हैं तो वे अपने बारे में कहे हैं कि नमे हृषिकाणि पतंत असत पथा न भारती मेंग मृषोपलक्षते। मेरी वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती है, मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट बोलता हूँ। नवे क्वेश्चन में मनसो मृषा गति, मेरा मन मिथ्या कुछ सोच ही नहीं सकता है, इतना मन उनका भगवान में रमा हुआ है। तो वे जैसे बोले हैं, श्री ब्रह्मा जी जैसे बोले हैं, उनके अनुगत में श्री नारद जी जैसा बोले हैं, और श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्रील सुद गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो बोले हैं उसके अनुसार बोलना, यही है अनुकथन, यही है अनुवाद। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुयेत जे नहीं पुमान अनुवर्ण तेना, जीव भगवान के अनुवर्णन से पवित्र होता है। अनुवर्णन जहाँ होता है वहाँ अपने आप अनुश्रवण होता ही है, तो इसीलिए मैं वर्णन करूँगा। नहीं तो प्रहलाद महाराज के पहले समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि भगवान के विषय में बोल चुके थे। भगवान नृसिंह देव का जब अवतार हुआ तो ऐसा भयंकर अवतार था कि देवता सब भाग गए, दूर हो गए। जब जब भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग स्वागत करते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, आसन देते हैं, निकट से जय जयकार करते हैं। लेकिन यह अवतार ऐसा हुआ कि भगवान के सभी भक्त, ब्रह्मा, शिव, देवता आदि सब वहाँ से दूर भाग गए। इतना भयंकर आँखें, नख भयंकर और जीभ लपलपा रहे थे सिंह जैसी, तो उनके आँख को देख करके और उनके वेश को देख करके वे आंत की माला पहने थे, सब समय फूल की माला पहनते और अपने से हिरण्यकश्यप के आंत निकाल करके और माला लगा ली। भगवान ये दिखा रहे थे कि मुझे कोई माला पहनाने वाला नहीं है, अब मैं यही माला पहनूंगा। और ऐसा क्रोध बढ़ता जा रहा था कि लगता था कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देंगे, इतना क्रोध में भगवान थे। तो सब देवता हाथ जोड़ने लगे, कोई दूर से खड़े होते थे झुंड के झुंड, ग्रुप में खड़े होते थे, हाथ जोड़ते थे तो भगवान दृष्टि डालते थे ऐसे आसन पर बैठे बैठे। तो ये बोलते, सरकार हम गंधर्व लोग हैं, आपके सेवक, किस पापी हिरण्यकश्यप ने हमारा दम निकाल दिया था। हम बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन जब से यह हुआ हिरण्यकश्यप तब से यह अपनी कीर्ति गवाता था। यहाँ तक कि श्री नारद जी भी हिरण्यकश्यप का जस गाते थे और कहते थे, विष्णु का जस कोई नहीं गा सकता है, मैं ईश्वर हूँ, मेरा जस गाओ। तो गंधर्व लोग गाते थे तो भगवान के पास रो रहे हैं कि अब तक यह अपना जस गवाता था। और वैतालिक लोग कहने लगे कि सरकार हम वैतालिक हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में हम आपका जस गाते थे और जस गाने पर आपका इनाम बड़ा बड़ा मिलता था, हमको हमें पुरस्कार मिलता था, भेंट मिलती थी। लेकिन यह जब हुआ हिरण्यकश्यप तो ये सब मना कर दिया, कोई सभा सोसाइटी नहीं, कहीं विष्णु का जस नहीं गाया जाएगा। और कारण क्या है कि वो मेरे भाई को मारा है, हिरण्याक्ष का वध किया है, इसलिए वो बहुत बदमाश है, उसका नाम कोई नहीं गाएगा, उसका कीर्तन कुछ नहीं। अगर कोई सप्ताह होगा या कोई मासिक सत्र होगा तो मेरा गुणानुवाद करना होगा। और सबका भोजन आदि भी रोक दिया था, वो लोग कीर्तन नहीं गा सकते थे, कथा नहीं कह सकते थे। अगर ये सब आयोजन करना होगा तो हिरण्यकश्यप सप्ताह करना पड़ेगा, वही चलता था। सब लोग स्तुति कर रहे थे, सबसे पहला नंबर श्री ब्रह्मा जी का था और ब्रह्मा जी अपने को गिल्टी फील कर रहे थे, यही वर दिए थे हिरण्यकश्यपु को, और सब उत्पात का कारण ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भगवान ने मना भी किया अंत में कि आप ऐसे वरदान मत दिया कीजिए, देख सुन करके वर दीजिए, इतना वर दिए और इसने दुनिया को तबाह किया है, साफ मना किए हैं भगवान, कभी मना नहीं किए शिव जी को ब्रह्मा जी को, लेकिन इस अवसर पर ब्रह्मा जी को साफ मना किए हैं कि आप ऐसा वरदान मत दिया कीजिए। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के मरने पर भगवान से कह रहे हैं, नतोस्मिनन्ताय दुरंतशक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्य संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। हे अनंत, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। दुरंत शक्ति है, आपकी शक्ति दुरंत है, आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। विचित्र वीर जाय, और आपका पराक्रम विचित्र है, केवल नख से हिरण्यकश्यपु जैसे बलवान दैत्य का आपने वध कर दिया है। विचित्र वीर और पवित्र कर्मणे, यद्यपि आप आंत की माला लगाए हैं, हिंसा का कर्म किया है, लेकिन फिर भी आपके कर्म परम पावन है। यदि कोई इन लीलाओं को सुनता है, गाता है, तो वो भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पवित्र कर्मा भगवान हैं, पवित्र कर्मणे, और इस विश्व की सृष्टि, इसका पालन और संहार आप अपनी शक्तियों के द्वारा, गुणों के द्वारा करते हैं, स्वलीलया, लीला से ही विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, इतना बड़ा विश्व चलाते हैं, लेकिन भगवान कभी थकते नहीं हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, अव्ययात्मज हैं। ऐसा कभी नहीं सुना कि भगवान सृष्टि करते करते अब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, इसके बाद रिलैक्स होंगे, तब जाकर के सृष्टि की हिम्मत करेंगे। अव्ययात्मा है, अव्ययात्मा, भगवान में कभी कोई क्लांति नहीं, थकावट नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, तो अव्ययात्मा है। इस तरह ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। इसके पहले, भगवान के अवतार के पहले सब लोग आशा छोड़ दिए थे कि हिरण्यकश्यपु भी मरेगा, ये तो अजर अमर हो गया, ब्रह्मा जी के वर से नहीं मरेगा और सबको मारेगा, सबके मन में यही भय था। लेकिन हिरण्यकश्यपु के मरने पर सब प्रसन्न हो गए और भगवान को बधाई दे रहे थे। इसके बाद दूसरा नंबर आया भगवान शिव का। तो भगवान शिव भगवान के सखा भी हैं, दास भी हैं, तो वे कुछ मजाक जैसा करने लगे भगवान सामने, तो अजीब नाटक आपने किया, इतना भयंकर रूप, कहाँ कमल जैसी आंखें और यहाँ तो दवानल जैसी भयंकर आंखें दहक रही थी। तो वो कहते, कोप कालो जुगांतस्ते, हे प्रभु, मैं आपका दास बोल रहा हूं, कैलाशवासी, अरे आपके क्रोध का समय तो जुगांत होता है ना, युग का जब अंत होता है, प्रलय का समय होता है, उस समय आप क्रोध करते हैं संकर्षण के रूप में और सारे विश्व का प्रलय करते हैं। तो कोप कालो जुगांतस्ते, आपके क्रोध का समय युग का अंत होता है, इस समय क्रोध की क्या जरूरत हो गई, क्रोध करके सबको तबाह कर रहे हैं, सभी रो रहे हैं, सब आपके भक्त हैं भाग रहे हैं, कोई आपका स्वागत नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्रोध बेकार समय पर आप क्यों किए। तो भगवान ने मानो कहा कि अरे इतना भयंकर दैत्य था, इसको मारना आवश्यक था। तो भगवान शिव का कोप कालो जुगांतस्ते हतोयम असुर अल्पक, अरे इस असुर में क्या है, यह असुर अल्पक, ये तो बहुत तुच्छ है, छोटा है, और वह अभी मर गया ना, आपने मार दिया ना, तो अब क्रोध की क्या जरूरत है, उसके जीवित रहने पर क्रोध करते ठीक है, मर गया तो अब क्रोध की क्या जरूरत है। तत्सुतम पाहि उपसृतम, अब आप प्रहलाद की रक्षा कीजिए। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद महाराज आपके भक्त हैं और आप भक्तवत्सल हैं। भक्तम ते भक्तवत्सल है, भक्तवत्सल भक्त से स्नेह करने वाले। तो हिरण्यकश्यप मर गया तो अब क्रोध की क्या जरूरत है, अब तो प्रहलाद को पालने की जरूरत है ना। आप प्रसन्न होइए और भक्त का पालन कीजिए, इस तरह से बेढंगा क्रोध मत कीजिए। भगवान शिव ने इस तरह थोड़ा विनोद जैसा किया, ये कोई क्रोध का समय है, क्रोध करके सबको भगा देना, सबको कपा देना, ये उचित नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। भगवान नृसिंह देव जैसे भयानक भगवत अवतार के सामने भी शिव जी ऐसे बोल रहे हैं, जो सखा होता है उसके साथ विनोद किया जा सकता है। ये गलत समय है, ये गलत क्रोध किया है आपने, समय का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद भगवान इंद्र जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, देवराज कहे जाते हैं, तो देवराज इंद्र कहते हैं प्रत्यानीता भवता न त्रायता स्वभागा। हे प्रभु, आपने हिरण्यकश्यप का वध करके हमारा भाग लौटा दिया। दैत्याक्रांतम हृदय कवलम तद गृहम प्रत्यबोधि। मेरा हृदय, हम लोगों का जो हृदय है, तद गृहम आपका घर है, आप हमारे हृदय में रहते हैं। लेकिन जब से हिरण्यकश्यप हुआ और जब से ब्रह्मा जी से वरदान लिया, तब से हम लोगों के हृदय में वही बसा रहता था। इतना भय रहता था कि 24 घंटे केवल वही हृदय में समाया रहता था। पहले आप रहते थे हृदय में, हमारा हृदय आपका घर है, लेकिन दैत्याक्रांतम हृदय कमलम, हमारे हृदय कमल पर दैत्य का आक्रमण था, वो चढ़ बैठा था, भय बस उसी का चिंतन होता था। अब हम आपका चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा हुआ आपने इसको मार दिया, आपकी जय। इस तरह से ये लोग बोल रहे थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव और सब ऋषि मुनि चारण सिद्ध सब धारावाहिक स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे थे, क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं ब्रह्मा दय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो बचसाम प्रवाह है नाराधितुम पुर गुणे रधुना पिप्रुह किम तुष्टुमर हति समय हरिरुग्र जाते है। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मादि देवगण और समस्त मुनिजन सिद्धजन वचसाम सत्वैकतान मत है, ये सब सत्वगुणी हैं, सत्वगुण में ही इनकी मति का विस्तार है, इनकी बुद्धि जहां भी जाए तो सत्वगुण में ही, ये सत्वगुणी हैं, शुद्ध हैं, महात्मा हैं, ऐसे लोग वचसम प्रवाह है, अपने वचन के प्रवाह द्वारा, धारावाहिक स्तुति द्वारा, अपने सिद्ध वचन से आपकी स्तुति कर, आपका गुण गा रहे हैं और आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुए, आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हो सके, तो मैं तो उग्र जाति, मैं तो रजोगुणी तमोगुणी वंश में जन्म लिया हूँ, मुझसे आप कैसे प्रसन्न होंगे। जब देवताओं से प्रसन्न नहीं हो पाए तो मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे। धारावाहिक स्तुति हो रही थी, ब्रह्मा जी बोल रहे थे, ब्रह्मा जी वेद के मूल वक्ता हैं, जब भगवान ने हृदय में वेद वाणी को दिया और ब्रह्मा जी के चार मुख से चारों वेद प्रकाशित हुए, स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समय ऋषिणा विश्व प्रसिद्ध, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुआ, पर वेद वक्ता ब्रह्मा जी के प्रवचन से भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तो भगवान केवल वचन की कुशलता से प्रसन्न नहीं होते, और सतगुण में कोई है, सिद्ध वक्ता है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन भक्त्या तुतोस भगवान गजयुद्ध पाया, भक्ति रहने पर, भक्ति से तो भगवान गजेंद्र के प्रति भी प्रसन्न हो गए, एक हाथी पर भी प्रसन्न हो गए थे, और अपने धाम से दौड़ करके आए, बचाए उनको। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवगण, मुनिगण, सिद्धगण अपने वचन प्रवाह से और पूर्व गुण अनेक गुणों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो उग्र जाति का मैं नीच कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा आपको। लेकिन फिर भी मैं आपका गुण गाऊंगा, क्योंकि आपका गुण गाने से ही जीव पवित्र होता है, आपको प्राप्त करता है। तो यही सिद्धांत है, भगवान के गुणों को गिन करके गा करके कोई शेष नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी गाना चाहिए, गाते ही रहते हैं। और अपनी जैसी बुद्धि है, जैसी पकड़ है, उसको गाना चाहिए, पहले सुनना चाहिए बड़े लोगों से, और इसके बाद उसी को दोहराना चाहिए। इसको अनुकथन कहते हैं। तो इस अनुकथन के श्रवण से, कीर्तन से ही जीव शुद्ध होता है। यद्यपि जीव में यह शक्ति नहीं है कि भगवान को जाने, विचार करे अपने प्रयास से, लेकिन पहले के लोगों ने भगवान के विषय में खूब सोचा है, समझा है, सुना है और बोला है, तो उसी को बोलना है। वो भाषा का अंतर है, कोई बात नहीं। भाषा चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगला हो, या मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, भगवान का जस होना चाहिए और वह अनुवाद होना चाहिए। कोई बोला है, प्रमाणिक व्यक्ति, उसकी बात को बोलना है। तो हमारी भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन गुणानुवाद तो होगा ही, और गुणानुवाद में यह शक्ति है कि जीव पवित्र हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है, समस्त वासनाएं कामनाएं नष्ट होती हैं, वो भगवान से प्रेम करना सीखता है और भगवान के धाम जाता है, जहाँ समस्त भगवदीय गुणों से वो अलंकृत होता है। ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की संख्या बनाना भी कठिन है, लिस्ट बनाना भी विद्वानों के लिए कठिन है। वो हो सकता है कि भू पांसु कहते हैं धूलि को, हो सकता है कि पृथ्वी के धूलि कणों को गिन सकें, समय के अनुसार, काले न समय बीतते बीतते हो सकता है करोड़ों जन्म में गिनते गिनते पृथ्वी के धूलि कणों को गिन दें। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे समर्थ लोग हैं, हो सकता है इस प्राकृत जगत में पृथ्वी के परमाणुओं को गिन दें। परम अणु का अर्थ है सबसे छोटा अंश किसी वस्तु का, परम अणु। अब उससे छोटा नहीं किया जा सकता, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु कहते हैं, परम अणु। तो अगर पृथ्वी को किसी मशीन में पीस दिया जाए पूरा, इतने पहाड़ है या मिट्टी है सब, और ये इनका आटा बना दिया जाए, तो हो सकता है कि संसार के बड़े बड़े विद्वान भगवान शेषनाग, नारद जी, ब्रह्मा जी, ये सब मिल करके हो सकता है गिनते गिनते इसको गिन दें, भूपान सभा, या जो हिमकण होते हैं, आपने देखा है जाड़े के दिन में कोहरा पड़ता है, छोटे छोटे हिम के कण है, उनको गिन सकते हैं, ऊपर पृथ्वी के परमाणु से भी ज्यादा होते हैं, और उनसे भी ज्यादा ज्योतिर्मंडल के प्रकाश किरण उससे भी ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि ये गिन दें एक दिन। लेकिन भगवान के गुणों का लिस्ट अगर बनावे लोग तो लिस्ट नहीं बना पाएंगे, कितने गुण हैं, फिर एक एक गुण की व्याख्या करें वो कहां से होगा। फिर भी किया गया है व्याख्या, शेष नहीं कर पाए लेकिन जितना किए उतना किए, सबने किया है, सभी भक्तों ने। भगवान के किस गुण पर लुब्ध नहीं, भगवान के एक सौंदर्य गुण को लीजिए, श्रीमद् भागवतम में जहां तहां वर्णन है श्री गोपी जनों के प्रसंग में कि भगवान कितने सुंदर हैं, अटत यद भवा नहनि काननम तुति जुगायते त्वाम अपसेता। भगवान जब वृंदावन में भ्रमण करते हैं और श्री गोपियां कहते हैं कि जब आपका दर्शन नहीं होता है अपश्यता, तो उस समय हमारा त्रुटि जुगायते, त्रुटि भी युग के समान बीतता है आपको देखे बिना। त्रुटि कहते हैं सुई के नोक से कमल के पत्ते को छेदा जाएगा, जितना उसमें टाइम लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं। टाइम क्या लगेगा, सुई का नोक है रखते हैं तो छेद हो जाएगा, तो त्रुटि आपको देखे बिना हमारा त्रुटि भी युग के समान बीतता है। और जब आप वन से लौटते हैं तो आपके सुंदर सुंदर अलकावली से युक्त आपके मुख को देखती हैं हम, तो उस समय आंख पर पलक बनाने वाले विधाता को हम मूर्ख समझते हैं कि ब्रह्मा ने बहुत गलत किया, काम किया कि आंख पर व्यवधान डाल दिया, पलक बना दिया। यह भगवान के रूप का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है। व्यंजना है, इतना कृष्ण को देखने की लालसा होती है और देखे बिना इतना दुख होता है। देखने पर परम आनंद और नहीं देखने पर परम दुख, इसके द्वारा भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया। गोपीजन कहती हैं भगवान से, वीक्षा लकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थ लाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्या वक्ष श्रियक रमणम च भवाम दास्य। हे श्याम सुंदर, विक्षाल कावृत मुखम, सुंदर सुंदर अल्पों से युक्त आपके मुख को जब से हमने देखा, आपके मुख को देख करके विक्षाल कावृत मुखम तव कुंडल श्री, और कानों में झूमते हुए कुंडल की शोभा देखा, कुंडल की शोभा से युक्त आपका मुख देखा, और आपकी मुस्कान, आपका गंडस्थल गाल देख करके दत्ता भयम च भुजदंड जुगम विलोक किया, और अभय दान देने वाले आपके सुंदर बाहों को देख करके हम आपकी दासी हो गए। यदि भगवान इस पर ये कहें कि ओहो यह कुलंगनाओं के लिए उचित नहीं है, तो वे कहते हैं कि काष्ट्रंग ते कल पदायत मूर्छिते न सम्मोहिताज चरिता न चले त्रिलोक्या। आप ही बताइए तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री है जो त्रैलोक्य सौभग विदम च निरीक्ष रूपम। कौन ऐसी स्त्री है जो आपके बांसुरी को सुन करके और आपके इस त्रिभुवन सुंदर रूप को देख करके आर्ज मार्ग से विचलित ना हो जाए? वो आप में अनुरक्त ना हो जाए, वो कृष्ण में अनुरक्त होना मतलब घर गृहस्थी से पतिव्रत धर्म आदि से विचलित होना है। तो कौन ऐसी स्त्री है तीनों लोकों में, स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर और पाताल में, कौन ऐसी स्त्री है जो आपसे प्रेम नहीं करेगी, आर्य धर्म से विचलित नहीं हो जाएगी? जद गो द्विज द्रुम मृग पुलका ने विवरण, जिस बांसुरी के गीत को सुनकर और आपके रूप को देख करके गौएं, गो द्विज पक्षी और द्रुम वृक्ष और पशु मृग ऐसा पुलकान्य विवरण, पुलकित होते हैं, इनके शरीर में रोमांच होता है। पशु पक्षी जड़ वृक्ष लता भी कृष्ण को देख करके और उनके वेणु गीत को सुन करके पुलकित होते हैं, रोमांच होता है। इन सब जीवों में भी जिस रूप को देख करके रोमांच होता है, जिनके गीत को सुनकर, तो ऐसी कौन स्त्री है जो धर्म मर्यादा से विचलित ना हो जाए, मतलब सब कुछ छोड़कर आप में अनुरक्त ना हो जाए? तो भगवान का यह सौंदर्य, उनके सौंदर्य का पूर्ण विवेचन कोई करने में समर्थ नहीं है, पर फिर भी विवेचन तो करना ही चाहिए। भगवान की सुंदरता का वर्णन करना, भगवान के दया का वर्णन करना, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करना। श्रीमद् भागवत में अनेक जगहों पर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है, वे कितने बड़े ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिव आदि सब उनके सेवक हैं, ऐसा वर्णन है। एक बार द्वारका में ब्रह्मा जी आए, तो भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहते थे ब्रह्मा जी, तो द्वार पर ही प्रतिहार ने उनको रोक दिया, सिक्योरिटी ने रोका, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी कहे, पहचानते नहीं हो? पहले देखो चार मुंह किसको होता है, देख करके तब बात करो। तब उन्होंने कहा कि वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, हाँ जाकर कहो भगवान से। तो वो जाकर कहा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी आए हैं, तो भगवान ने कह दिया कि जाकर पूछो कौन ब्रह्मा। तो फिर द्वारपाल आकर के पूछा कि द्वारकाधीश पूछ रहे हैं आप कौन ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी तो घबरा गए, ब्रह्मा जी सोचने लगे आज द्वारकाधीश का मूड ठीक नहीं है क्या, ये आज क्यों पूछने लगे कौन ब्रह्मा, क्या हमारे अलावा कोई और ब्रह्मा है, भगवान को क्या हो गया, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो वे जोश में बोल दे, जाकर कह दो कि सनक पिता ब्रह्मा जी आए हैं, सनत कुमार के पिता, ये परिचय देना, सनत कुमार के पिता ब्रह्मा आए हैं। तो जाकर द्वारपाल कहे कि उनके पुत्र का नाम सनत कुमार है, वे ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है आने दो। तो ब्रह्मा जी आए, वहां खड़े थे द्वारकाधीश को दंडवत करके खड़े थे, तब तक आठ मुख वाला ब्रह्मा आए। और बांह भी उसी तरह से ज्यादा शरीर की लंबाई चौड़ाई भी वैसे ही ज्यादा, बहुत बड़े शरीर वाले 8 मुख वाले ब्रह्मा आए और प्रणाम किए। तब तक 32 मुख वाले ब्रह्मा आए, 64 मुख वाले, इस तरह से हजारों मुख वाले ब्रह्मा आ गए। और भगवान सबसे पूछते थे कैसे हैं, सृष्टि ठीक से हो रही है ना। तब तक रुद्र आए, शिव आए, 5 मुख वाले, 10 मुख वाले, 15 मुख वाले, 20 मुख वाले। शिव जी के 5 मुख हैं, तो कई मुख वाले शिव आए, रुद्र आए, वे सब प्रणाम करते थे। और भगवान सबसे पूछते थे सृष्टि का संहार ठीक से होता है ना, सब प्रश्न करते थे, समाचार जो जैसा होता है वैसे पूछते थे। उसके बाद इंद्र आए, अनेक इंद्र, उन सबके बीच में, अनेक ब्रह्मा और अनेक शिव के बीच में, जो पहले ब्रह्मा जी आए थे उनके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वे ऐसे खड़े हुए थे जैसे हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा हो, और ऐसे ऐसे देख रहे थे ऊपर, 4 मुख से ऐसे देख रहे थे सब पर, कितने बड़े बड़े ब्रह्मा आए हैं, कितने बड़े बड़े रुद्र और इंद्र, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे। और लोग प्रणाम कर रहे थे भगवान को, तो उनके मुकुट का अग्रभाग लग रहा था आपस में, 10 आदमी प्रणाम करेंगे तो मुकुट टकराएगा। तो इस तरह से भगवान के पाद पीठ को नमस्कार कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि उनका मुकुट गीत गा रहा है, भगवान का जस गा रहा है। तो यह है ऐश्वर्य भगवान, सबसे बड़े सृष्टि करता है, सबसे बड़े संहारक हैं, वही पालन करता है, वही विष्णु हैं, इंद्र हैं, ये उनकी ईश्वरताई है, ऐश्वर्य है। इसी तरह से अनंत गुण हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का लिस्ट बनाना भी कठिन है। इसके बाद वो श्लोक बोलते हैं जो मैं कल व्याख्या किया था, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्ष मारो। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कि भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करें, या प्रतीक्षण देखता रहे, और हृदय से, वाणी से और मन से भगवान को नमस्कार करें। इस तरह से जीने वाला व्यक्ति भगवान के आनंद और वैकुंठ का दाय भाग प्राप्त करता है। भगवान गुणात्मा है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा केवल सोच लेते हैं लोग कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ 3 गुणों से परे, लेकिन अन्य समस्त सद्गुण में निवास करते हैं। दूसरे में भी जो गुण है वो भगवान के कारण है, भगवान है तब वो गुण है। जो कोई व्यक्ति जीवित है तभी ना उसमें दया है या सौंदर्य है। और जीवंत शक्ति क्या है, भगवान का एक अंश है। ममई वांसो जीव लोग के जीव होते सनातन, भगवान का अंश। जीव जब शरीर में है तभी शरीर में दया है, चाहे शरीर सुंदर लगता है या उसमें कोई कला है, वचन शक्ति है या कर्म सामर्थ्य है, जीव की उपस्थिति के कारण। और जीव भगवान का एक नगण्य अंश है, तुच्छ अंश है। और भगवान समस्त जीवों के मूल उद्गम है। तो सब मिलाकर सार यही निकला ब्रह्मा जी की स्तुति से कि भगवान का कीर्तन करना और भगवान के बारे में सुनना यही परम श्रेष्ठ है, यही साधन है। इससे व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी रहता है, भगवान भगवत धाम प्राप्त करता है अंत में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।